प्यारे साथियों नमस्कार। आज 8 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सुजीत कुमार दास समस्तीपुर से, सोनाली सोनीपत हरियाणा से और रितेश साहू बैतूल मध्य प्रदेश से। तो सुजीत, सोनाली और रितेश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मुझे लगभग लगभग रोज ही आप सब की ओर से और अपनी ओर से बधाई देने का एक बड़ा सुनहरा और बड़ा खुशनुमा अवसर मिल रहा है, आज भी मेरे पास एक ऐसा अवसर है और यह अवसर उपलब्ध कराया है अनुराग राय ने, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। और अनुराग ने UPPCS का प्री क्वालिफाई किया है और इन्होंने अपने इस सफलता में जो आपका डेली ऑडियो गाइडेंस है इसकी भूमिका के प्रति आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद व्यक्त किया है। तो अनुराग, मैं आपको अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही इन सभी की ओर से और अपनी ओर से आपके आगे की बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं और ईश्वर से हम सब प्रार्थना भी करते हैं कि आपको इससे भी बेहतर और बड़ी सफलताएं हासिल हों। दोस्तों, इसी के साथ ही एक सूचना है और सूचना यह है कि जो अभी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इससे पहले 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एक वीडियो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिद्धांत को लेकर के था, फिर उसके बाद का वीडियो और उसके बाद का वीडियो आपने देखा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सेकेंड कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए उसको लेकर के सेकेंड वीडियो था, और थर्ड वीडियो इस बात इस सब्जेक्ट पर था कि जो पढ़ने की दिशा हो वो कैसी होनी चाहिए। उसी क्रम में अब फोर्थ वीडियो जारी किया गया है और इसका संबंध आपकी प्री की तैयारी से है। प्री एग्जाम होने में अब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि लगभग लगभग 2 महीने ही बच गए हैं, तो इस तैयारी को कैसे आप एक सिस्टमैटिक रूप देंगे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर एक वीडियो रिलीज किया गया है और वो afeis.com पर अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि इसके पहले के जो 3 वीडियो जारी किए गए हैं उनमें से सभी वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया है और मुझे अपने फीडबैक से अवगत भी कराया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप देखिए कि चौथा ये वीडियो आपको कैसा लगता है, उद्देश्य बहुत साफ है दोस्तों, और वह यह है कि किस तरीके से कितना अधिक अपने सीमित साधनों में, अपने सीमित ज्ञान समझ अवलोकन और अनुभवों के आधार पर आप लोगों की मदद मैं कर सकता हूं, और डेफिनेटली यह मदद एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आपको दे पा रहा हूं। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में कल हम लोग सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कुछ एक भूमिका के रूप में या एक पृष्ठभूमि या कह लीजिए थोड़ी सी समझ विकसित करने के रूप में सेंसिटिविटी की उपयोगिता पर आपसे बातें की थी, क्योंकि जब व्यक्ति अक्सर जब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं सेंसिटिव नहीं हूं, ये किसी की समस्या नहीं है कि मेरे अंदर सेंसिटिविटी क्यों नहीं है। जो समस्या है लोग जो मुझसे कम से कम शेयर करते हैं और पूछते हैं जिसका निदान, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ में ज्यादा ही कुछ सेंसिटिविटी है और इस सेंसिटिविटी के कारण मुझे धोखा खाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, लोग मेरा नाजायज फायदा उठा लेते हैं, इस तरह की शिकायतें वो करते हैं। यानी कि जो समस्या है वो समस्या सेंसिटिविटी के कम होने की या नहीं होने की नहीं है, इसके ज्यादा होने की होती है। कल मैंने आप लोगों को यही बताने की कोशिश की थी कि दरअसल सेंसिटिविटी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है और इसके बिना तो हम सब मशीन ही हो जाएंगे, इसलिए इसके होने पर तो कम से कम चिंता कीजिए ही मत। जब अगर ये नहीं है तो वो चिंता का कारण है और उसकी फिर सामूहिक रूप से चिंता की जानी चाहिए। जैसे कुछ दार्शनिक, कुछ विचारक इसकी चिंता भी करने लगे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोट आ रहे हैं, कंप्यूटर तो आ ही गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, पूरी की पूरी एक वर्चुअल दुनिया बन चुकी है, अब ऐसे में आदमी कितना संवेदनशील रह पाएगा, एक चुनौती है। और जिस दिन वह संवेदनशील नहीं रह जाएगा उस दिन फिर स्थिति इस दुनिया की क्या होगी, इसको लेकर के वो अपने अपने ढंग से अपने अपने बातें कह रहे हैं। खैर, तो मित्रों कल ही मैंने आप लोगों को एक इशारा भी किया था और वो ये था कि जो सेंसिटिविटी है उसे हमें सही संदर्भों में समझना होगा, कि जिसे हम ओवर या एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी कह रहे हैं वो कहीं और तो कुछ नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि वो एक्सेज सेंसिटिविटी है, कुछ अतिरिक्त ही संवेदनशीलता आ गई है। लेकिन उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और दूसरा नकाब अपना डाल करके, सेंसिटिविटी का नकाब डाल करके आपके सामने मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है और आप और हम उसे अपनी सेंसिटिविटी समझ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ तत्व मैं आज आपको देने जा रहा हूं ताकि आप अपनी सेंसिटिविटी का सही जायजा ले सकें, उसकी सही तरीके से पहचान कर सकें कि वो इनफेक्ट है क्या। जैसे मित्रों मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे बहुत अधिक अपनी संवेदनशीलता मान रहे हैं वह हमारे किसी डर का कारण हो, किसी भय की वजह से हो, या कह लीजिए कि साहस का अभाव हो। जैसे आप इसे इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि एक भूत का भय है, भूत है पता नहीं है कि नहीं है, राइट। तो आप देखिए कि जिन्हें भूत का भय नहीं है वो पीपल के पेड़ या जामन, कहते हैं कि ऐसी जगहों पर भूत होता है, या खंडहर, उनके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते, वो जाएंगे गुनगुनाएंगे। सच पूछिए तो बहुत से लोगों को तो मैंने ये भी देखा है, बल्कि एक नाटक ही मैंने बादल सरकार का पढ़ा था, अभी मुझे एग्जैक्ट उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, जहां की कुछ दोस्त, आप सोच करके देखिए कि कुछ दोस्त शमशान घाट में जाकर के पिकनिक मना रहे हैं और वहां प्रेम प्यार मोहब्बत और इस तरह की बात कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मतलब शमशान घाट में वो पिकनिक मना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है, या उनकी संवेदनशीलता कुछ अलग तरीके की हो गई है, या उनमें शमशान घाट का जो फियर था वो नहीं है, उनके लिए शमशान घाट भी उसी तरह से है जैसे कि कोई उद्यान हो या कोई पिकनिक स्थल हो, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, उनके अंदर उतना साहस है कि उसके बारे में जितने भी मिथक हैं, कथाएं हैं, झूठ सच्ची जो बातें हैं उन सब से उन्होंने अपने को उबार लिया है और उसको भी एक सामान्य स्थल की तरह वो मानकर चल रहे हैं। तो उनकी सेंसिटिविटी उस तरह की वहां खत्म हो गई है, जो भय की सेंसिटिविटी है वो खत्म हो गई है। और जिनमें इस तरह की सेंसिटिविटी होती है, आप देखिए कि वो खंडहर से गुजरेंगे तो डरने लगेंगे, उनको लगेगा कि भूत आ गया, पीपल के पेड़ के नीचे से अगर वो गुजर रहे हैं तो उनको लगेगा कि अब भूत जो है ना पीपल के पेड़ से नीचे कूदा और बस मेरा गला दबाया। तो मित्रों थोड़ा सा ये भी अंतर देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा अपना भय, हमारे अपने साहस का अभाव ही तो इसके केंद्र में नहीं है, इसके मूल में नहीं है। और वैसे आप इस साहस के अभाव को या फियर को आप चाहे तो वीकनेस से भी जोड़ सकते हैं, हमारी अपनी कमजोरियों से भी जोड़ सकते हैं। देखिए कि जो आदमी कमजोर मन का होता है वो चीजों के प्रति बहुत अतिरिक्त संवेदनशील हो जाता है। मैंने देखा है, मेरे एक बहुत अच्छे परिचित है दिल्ली में, उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया और भाई को ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, इनके पास फोन आया और ये भागे भागे भाई को अपना देखने पहुंचे तो भाई तक पहुंच नहीं पाए, वहां एक ग्लास था और भाई का अंदर इलाज हो रहा था, देखा कि भाई खून से लथपथ था। तो जैसे उन्होंने अपने भाई को खून से सना हुआ देखा वो वहां बेहोश हो गए, यानी कि वो ब्लड देख ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने बाद में बताया कि वो तो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए और भाई को देखने पहुंच गए, ब्लड देखते ही वो बेहोश हो जाते हैं, यानी कि वो ब्लड के प्रति इतने ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है कि वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाते। तो ये उनकी अपनी कमजोरी है जो ब्लड के प्रति उनकी सेंसिटिविटी। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, हर कोई के साथ तो ऐसा नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता लेकिन उनके साथ हो रहा है। तो ये जो हो रहा है यह बेसिकली उनकी अपनी वीकनेस की देन है, सही मायने में उनकी अपनी सेंसिटिविटी की देन नहीं है जिसे वो सेंसिटिविटी समझ रहे हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों मुझे कभी कभी तो लगता है कि हमारी जो अकर्मण्यता है वह भी हमें इस तरह के सेंसिटिविटी के प्रति आकर्षित करती है। जैसे हम किसी को फेस नहीं कर पाते, हम कर्मठ नहीं है, और जब कर्मठता नहीं होती है तो फिर इस तरह की सेंसिटिविटी आ जाती है जो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि मानसिक विकार का रूप भी धारण कर लेती है। हमें आदत पड़ जाती है कि हम बैठे बैठे लेटे लेटे दुनिया के बारे में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें कि अरे देखो दुनिया कितनी दुखी है, गरीबों का शोषण हो रहा है। कल कुछ नहीं रहे, न तो दुनिया के दुख दूर करने के लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि सच पूछे तो अपने यहां ही के नौकर चाकरों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन चिंता ऐसे की जा रही है कि दुनिया में गरीबों का इतना शोषण हो रहा है, उनका कोई रखवाला नहीं है, फलाना 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 स्ट्रीट चिल्ड्रंस की बातें कर रहे हैं। तो इसमें अकर्मण्यता है। हम जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके प्रति जो अपनी संवेदना दिखा रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, तो अकर्मण्यता से उपजी हुई संवेदना है, ये वास्तविक संवेदना नहीं है। मित्रों एक बात मुझे और भी लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं की कोई चाहत या अपने अंदर की कोई कमी भी हमें इस तरह से अतिरिक्त संवेदनशीलता से जोड़ देती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी बताता हूं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। एक लड़का था, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, एक लड़की थी वो भी इंजीनियरिंग में, सेम कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो वो लड़का दोपहर में जब सब लंच लेते थे तो वो कुछ भी नहीं ले जाता था, लंच वगैरह बॉक्स वगैरह नहीं ले जाता था, वो वैसे जाता था कुछ भी खा लेता था। तो उस लड़की ने देखा और उसने पूछा कि तुम लंच बॉक्स लेकर के नहीं आते हो, क्या बात है तुम दोपहर में खाना नहीं खाते क्या? तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मसले में मेरी माँ नहीं है, मैं जब छोटा था तब मेरी माँ गुजर गई थी, तो अब घर में कोई है नहीं कि जो लंच बॉक्स बना करके दे सके, तो बस मैं ऐसे ही अपना काम चला लेता हूं। अब जो उसने ये बात कही कि मेरी माँ नहीं है, ये उस लड़की को छू गई, मतलब समझ लीजिए कि इसके प्रति वह लड़की अतिरिक्त संवेदनशील हो गई। अब जब अतिरिक्त संवेदनशील हो गई तो बट नेचुरल है कि वो उससे भावुकता के स्तर पर जुड़ भी गई। अब वो अपना टिफिन में ज्यादा ले आती थी, फिर उसको बुलाती थी कि लो तुम भी खा लो। तो उसको लगा कि इसके माँ की कमी को अब कैसे पूरा किया जाए, शायद उसके अवचेतन मन में अचेतन मन में आया होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ समय के बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब ये बात है कि शादी के बाद क्या उसने महसूस किया होगा और क्या नहीं किया होगा, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस अतिरिक्त संवेदनशीलता का जो परिणाम हुआ या संवेदनशीलता का जो परिणाम हुआ वो विवाह में हुआ, प्रेम प्रसंग में हुआ, और फिर प्रेम प्रसंग विवाह में तब्दील हो गया। तो ये जो अतिरिक्त संवेदनशीलता आई उस लड़के के प्रति या संवेदनशीलता ही आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी कहीं अपनी चाहत की देन थी, हम खुद चाह रहे थे, हमारे अंदर भी कोई कमी थी, हम भी किसी को ढूंढ रहे थे, और उस ढूंढने के लिए इस संवेदनशीलता ने, इस घटना ने एक थ्रेड का काम किया, एक पतले धागे का काम किया और हम उससे जुड़ गए। मित्रों कभी कभी मुझे लगता है कि हम, हर कोई चाहता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, और अच्छी बात है, तारीफ होना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई चाहता है तारीफ करें। और जब आप संवेदनशीलता दिखाते हैं तो आपको तारीफ मिलती है, कम से कम आलोचना तो नहीं ही सुनने को मिलता है ना। तो ये जो प्रशंसा की चाहत है ये भी संवेदनशीलता हो सकती है। और आखिरी बात मित्रों वो ये है कि जब हमारे अंदर से यथार्थ की समझ गायब हो जाती है, हम यथार्थ को समझ नहीं पाते, यथार्थ को ठीक तरीके से पकड़ नहीं पाते, तो बट नेचुरल है कि फिर हम संवेदनशील होते हैं, और वही संवेदनशीलता बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो अतिरिक्त संवेदनशीलता का रूप ले लेती है। तो मित्रों मैंने यहां कुछ आपको वो तथ्य बताने की कोशिश किए हैं जिनको मैंने महसूस किया है कि बोलचाल की भाषा में हम सब संवेदनशीलता का नाम दे देते हैं जबकि वो इनफैक्ट संवेदनशीलता नहीं होती है, उनके मूल में उनके जड़ में कुछ और दूसरा होता है। तो यदि आप सच में अतिरिक्त अपनी अतिरिक्त संवेदनशीलता से परेशान हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपके सामने यही है कि आप अपनी संवेदनशीलता की सच्चाई को समझिए कि वास्तव में वो उसकी सच्चाई क्या है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप सच्चाई को समझेंगे मतलब आपको यथार्थ समझ में आ जाएगा, और जैसे यथार्थ समझ में आता है संवेदना कंट्रोल में आ जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाती लेकिन वो कंट्रोल में आ जाती है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा मित्रों कि इस अतिरिक्त संवेदनशीलता का कंट्रोल में आना बहुत अधिक जरूरी है। राइट फ्रेंड, तो चलिए मैं अब लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को अब यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, और अब आगे मैं चलता हूं और जो है AIR न्यूज का पड़ाव। मित्रों, आज कुछ न्यूज में हैं, AIR न्यूज में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आपको अपनी तरफ से ऐड करके बताऊंगा। पहली खबर आपने सुनी, जो सबसे बड़ी खबर है, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच मुलाकात होनी है। मुलाकात में देखिए क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, केवल यही नहीं कि वो विदेश यात्राओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और भारत की विदेश नीति बहुत सुदृढ़ हुई है और भारत की जो इमेज भी है दुनिया में बढ़ी है, बल्कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि भारत के बहुत देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत हुए हैं, जिनमें अमेरिका नो डाउट की सबसे प्रमुख है। और आप देख लीजिए कि मोदी जी किन अमेरिका की कौन सी यात्रा है, अदरवाइज इतनी फ्रिक्वेंटली जर्नी किसी भी दूसरे देश का टूर कोई भी राष्ट्र या सरकार का प्रमुख नहीं करता है। स्वाभाविक है कि इसकी पृष्ठभूमि होती है और एक उम्मीद से जाया जाता है, बातचीत पहले हो चुकी होती है और संभावनाएं रहती हैं। और जब दो राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख इस तरीके से जब मिलते हैं और आपसी जो एक समझ लीजिए कि जो फीलिंग होती है एक दूसरे से मिलने के बाद, वो राष्ट्रों के संबंधों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। ये बहुत ज्यादा एकदम रूखा रूखा मामला नहीं होता कि कागज पर संधियां हो गई, आपसी संबंध कहीं न कहीं व्यक्तियों के अपने व्यक्तित्व के संबंधों से भी जुड़े हुए होते हैं, जो हम अभी देख रहे हैं। न्यूज में जो आपने बात सुनी है मित्रों, वो ये है कि कल मैंने आपसे थोड़ी सी विस्तार से चर्चा की थी, खासकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के मेंबरशिप को लेकर। वियना में अभी ही बस इसकी बैठक होने वाली है और उसमें जितने भी देश इसके मेंबर हैं वो उस बैठक में भाग लेंगे, और उसमें भारत ने उसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, उसमें भारत की सदस्यता के बारे में विचार किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है इसमें शामिल होने के लिए कि सर्वसम्मति से ही आप उसमें शामिल हो सकते हैं, मतलब उसमें शामिल उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से एक भी सदस्य अगर भारत के विरोध में रहा तो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ये इस सबसे बड़ी चुनौती है, और चूंकि अभी उसकी बैठक ही होने जा रही है, आप उसकी खबर भी पढ़ेंगे एक दो दिन में ही, 2-4 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो आपने देखा कि स्विट्जरलैंड ने भी यस कह दिया जो पहले विरोध में था, तो स्विट्जरलैंड को भारत ने साथ लिया है, और अमेरिका तो कह ही रहा है, जापान का भी नाम आपने न्यूज में सुना कि जापान भी इसके पक्ष में है कि भारत को इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। मैं कल आपको बता चुका हूं कि भारत इसके लिए क्यों उत्सुक है। डेफिनेटली ऐसा हो जाने से भारत का व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो परमाणु प्रौद्योगिकी है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उससे भारत को बहुत मदद मिलेगी। ये भारत का अपना इंटरेस्ट है, लेट्स सी कि क्या होता है। न्यूज में फिर आपने ये भी सुना दोस्तों कि जलवायु संरक्षण पर भी बातचीत होगी, जो भारत का बड़ा अभी के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कंसर्न है। और इस मामले में धीरे धीरे, खासकर पर्यावरण संरक्षण के मामले में, भारत मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड लीडर के रूप में धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। खासकर वो जो जीवन पद्धति और जलवायु न्याय की जो बात कही गई है, पर्यावरण न्याय की बात कही गई है, वो मुझे लगता है कि भारत को काफी माइलेज दिला देगा। तो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट खबर थी। फिर जो दूसरी एक खबर थी, जो बड़ी विचित्र सी खबर है और दुर्भाग्यजनक भी खबर है, और नहीं होती तो ज्यादा अच्छी, मतलब घटना नहीं घटती तो खबर तो फिर घटे होगी अगर घटना घट गई, वो आपने देखा कि बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और उसमें जो मेरिट लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स का जो लेवल देखा जा रहा है वो एक तमाशा बना हुआ है। और सच पूछे तो बहुत ही शर्मनाक घटना है कि उसकी जो टॉपर रही है उसको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने नंबर के पेपर होते हैं, वो स्टेट टॉपर है। बुलाया भी गया जब ये कहा गया कि नहीं, अब बोर्ड जो मेरिट लिस्ट में आए हैं स्टूडेंट, इनका इंटरव्यू लेगी, इनकी जांच परख करेगी, तो बाकी तो लोग आ गए लेकिन जो टॉपर है वो आई ही नहीं, उसने अपना बीमारी का सर्टिफिकेट भिजवा दिया। पता नहीं वो सच है या बहाना है, जो सामान्यतः ऐसा होता है। और अब उसकी जांच की बात कही गई है कि उसके रिजल्ट्स की जांच होगी। ये सच पूछे तो दोस्तों, ये हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था की एक भयानक किस्म की खामी की तरफ संकेत करता है, भयानक किस्म की खामी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर उसमें घुन लग गया तो मान करके चलिए कि फिर आप किसी चीज को बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि सारी चीजें वहीं से ओरिजिनेट होनी है। जितने भी चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे कोई भी संस्था हो, किसी भी तरह का काम काज हो, ओरिजिनेशन तो उसका जो है वो शिक्षा ही है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी जो व्यापम का घोटाला चला है, उसने पूरी दुनिया को, एक पूरे देश को एक तरीके से हिलाकर रख दिया था कि ये क्या हो रहा है। चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो मेडिकल सर्विस की बात हो, चाहे और दूसरे एजुकेशन की बात हो, चाहे दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हो, उन सब में योग्यता का मापदंड न होकर के कुछ और मापदंड हो गया है। वही आपको अभी बिहार के इंटरमीडिएट के रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये घटना है, घटना के रूप में आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। मित्रों, एक जो बड़ी खबर है वो फिर थी मौद्रिक नीति को लेकर के, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। न्यूज में आपने सुना, तीन चीजें आपने सुनी जो सबसे सबसे मुख्य थी, कि रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, रिवर्स रेपो में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और नगद आरक्षण अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो मित्रों, सीधी सी बात है कि आपको इन तीनों के बारे में जानना चाहिए। रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, नगद आरक्षण अनुपात क्या है, ये क्यों होता है, कितना है, और अगर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ। मैं यहां उसे डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूं, इसलिए कि इस टॉपिक पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, और आप जानते हैं कि हर दो महीने के बाद, तीन महीने के बाद रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आती है, या दो महीने के बाद आती है, और ऐसी स्थिति में मैं अगर हर दो महीने में इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करूंगा तो मेरे जो पुराने जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से मुझ पर नाराज भी होंगे। हालांकि बेचारे कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके मन में थोड़ा सम्मान का भाव तो कहीं ना कहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूं, तो लेकिन उनके साथ अन्याय होगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक सूत्र बता दिया है मैंने कि वो इनके बारे में देखें, इसके बारे में समझें, जानने की कोशिश करें। हाँ, जो मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पर चर्चा कर रहे थे तो इकोनॉमिक्स पर हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बहुत विस्तार के साथ बात की है, और याद करने की कोशिश कीजिए कि उस डिमांड और सप्लाई के तहत मैंने जो रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको समझाने की कोशिश की थी कि बेसिकली ये जो मॉनेटरी पॉलिसी भी है ये और कुछ भी नहीं, सरकार की एक तरह की डिमांड एंड सप्लाई, मुद्रा से संबंधित डिमांड एंड सप्लाई ही है, और किस तरीके से वो रेपो, रिवर्स रेपो और नगद आरक्षण के अनुपात से वो मुद्रा के डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करती है वो मैंने आपको, आप लोगों को समझाया था। मित्रों, आप लोगों के पास इससे संबंधित नोट्स भी हैं, एक पूरे पेज पर आपको ध्यान होगा। अच्छा मौका है कि आप अखबार की इससे संबंधित खबर को निकालिए, उस नोट्स के पॉइंट को देखिए, क्लास के लेक्चर को याद करने की कोशिश कीजिए, और फिर अखबार में जो कुछ भी लिखा गया है उसे समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मालूम है तब भी आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, यह एक अच्छा मौका है जब आपको उसका रिवीजन करना चाहिए। खासकर मेरे जो चार बैच के स्टूडेंट हैं, और मतलब मेरे जो दूसरे प्रिय श्रोता भी हैं, अगर वो स्टूडेंट नहीं भी हैं लेकिन अगर वो रिवर्स इस मौद्रिक नीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क भी न्यूज से ही निकला हुआ होमवर्क है। आपने देखा कि जो रिजर्व बैंक का जो वक्तव्य है कि कोई चेंज नहीं किया गया है, उसके बारे में रिजर्व बैंक ने क्या कहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह अभी अनिश्चितता, हम अभी अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहे हैं, अनसर्टेनिटी का पीरियड है, और इस अनसर्टेनिटी के पीरियड के कारण ही हम इनमें परिवर्तन करने का कोई रिस्क नहीं ले सकते या नहीं लेना चाह रहे हैं। फिर जब वो अनिश्चितताओं के दौर के बारे में बताते हैं और अखबारों में जिस तरीके से छपा है कि उन्होंने इनमें परिवर्तन क्यों नहीं किया, देखिए अखबारों में हेडलाइन में आया है कि ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना, उसमें नहीं है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये नहीं कहा गया। देखिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षण अनुपात, ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, और जो ब्याज दर है ये हमारे व्यवहार की भाषा है जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो अखबार तो बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करेगा, राइट। तो उसने कहा ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, न्यूज में भी ये बात कही गई है, और ब्याज दरों में जो परिवर्तन होता है याद रखिए वो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षण अनुपात पर ही आधारित होता है। जब इनमें परिवर्तन होता है तो उसको बेस बना करके फिर बैंक अपने ब्याज दरों में परिवर्तन करते हैं। तो इसको इस तरह से जोड़ करके आप देखिएगा। तो जो अनिश्चितताओं का दौर जो बताया है उन्होंने, उसमें उन्होंने तीन चार पॉइंट्स दिए हैं, है ना। आप भले ही न्यूज में से उस तरीके से न निकाल पाए हो, मैं निकाल करके आपको बता रहा हूं कि किस रूप में अनिश्चितताएं हैं और जिनकी वजह से उन्होंने रेपो दर, रिवर्स रेपो आदि में कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, तो कौन सी अनसर्टेनिटी उनको लग रही है। जैसा पहला बात पहली उन्होंने कही, सेवंथ पे कमीशन, वित्त आयोग, सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट लागू कर सकती है, राइट। अब सोच करके देखिए कि इसका मौद्रिक नीति से क्या संबंध है। मैं आज आपको नहीं बता रहा हूं, अगर टाइम मिला तो मैं कल आपको इसके बारे में खुलासा करूंगा, लेकिन वायदा नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि कल हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट खबरें आ जाएं तो फिर ये रह जाएंगी, और वैसे भी ये तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो सेवंथ पे कमीशन का इससे क्या संबंध है। फिर उनका अच्छा मानसून, मतलब मानसून अच्छा आने की संभावना है, अब भला इसका रेपो दर, रिवर्स रेपो दर से क्या संबंध हो सकता है, अब जानने की कोशिश कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद उन्होंने कहा वितरण प्रणाली, धीरे धीरे ये जो वितरण प्रणाली है ये ठीक ठाक होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है ना, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे आप देखिए कि लीकेज खत्म हो गए, गैस सिलेंडर का जो सब्सिडी थी वो डायरेक्ट खाते में जाने लगा, मनरेगा की जब खाते में जाने लगा, तो इस तरह का जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी, चूंकि वो खाते में जाने लगा है, तो उससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो गया है। तो भला इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अच्छे होने का क्या संबंध मौद्रिक नीति से। अब आप देख रहे हैं कि मौद्रिक नीति दिखती तो छोटी सी है, लेकिन उसका फैलाव कितना होता है। इसके बाद एक पॉइंट उन्होंने कहा, और कहा कि जो लक्ष्य जो रखा गया है, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें मुद्रा स्फीति का जो लक्ष्य रखा गया है, मुद्रा स्फीति का जो दर, ये 5% तक होना चाहिए, मतलब 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां तक हम कंट्रोल करेंगे। तो अब इस मुद्रा स्फीति का भला क्या संबंध मौद्रिक नीति से हो सकता है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नगद आरक्षण अनुपात से हो सकता है। मित्रों ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसको इसका एक्सरसाइज करना, इसका अभ्यास करना, और प्लीज आप लोग इसे करके देखिए, आप लोग कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे फर्स्ट टू फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनको शायद इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने क्लास अटेंड की है और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है, और अगर आप उसे भूल चुके होंगे तो हार मत मानिए, याद करने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट के लिए आपके पास एक एक पेज के नोट्स दिए हुए हैं, उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, जब आप उन पॉइंट्स को देखेंगे और लेक्चर को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सब बातें याद आ जाएंगी। हो सकता है कि तुरंत याद ना आए, थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन उस तकलीफ को बर्दाश्त कीजिएगा, सरेंडर मत कीजिएगा और समझिए। मित्रों ये इसके न्यूज थी, आपके आकाशवाणी की न्यूज थी, न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। मित्रों न्यूज पेपर में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज पर एडिटोरियल कमेंट लिखे गए हैं, जिनको न्यूज में शामिल नहीं किया गया है। न्यूज चैनल्स में ये न्यूज थी और बड़ी प्रोमिनेंटली थी, और आज अखबारों में तो उसका प्रमुख खबर के रूप में भी स्थान मिला है, अगर एडिटोरियल लिखा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। और वो है कि अभी जो फिल्म आ रही है उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब के लिए जो हमारा फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसने बहुत से कट सुझाए हैं कि आप इन इनको कट कीजिए, कुछ दृश्यों को कट कीजिए। बल्कि उसने तो यहां तक कहा है कि जो टाइटल में जो पंजाब शब्द है, इस पंजाब शब्द को ही उड़ा दीजिए, उड़ता पंजाब में से पंजाब उड़ा दीजिए। इसको लेकर के बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई है, फिल्म जगत में भी हुई है, जो बौद्धिक जगत है उसमें भी हुई है, और एडिटोरियल कमेंट भी आप देखेंगे कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड उसका नाम ही कर दिया गया, हालांकि उसका नाम फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं है, अंग्रेजों के जमाने में सेंसर हुआ करता था, अब तो उसको केवल प्रमाणित करना होता है। तो अखबारों के एडिटोरियल ने भी इसकी बहुत बहुत कड़ी आलोचना की है, और एक इसको एक तरीके से कह लीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक कुठाराघात माना गया है, कि जो आर्ट लिटरेचर कल्चर अगर इस तरीके से आप उनको कंट्रोल करने लगेंगे तो जो इनोवेशन है, जो ओरिजिनलिटी है, जो कल्पना की उड़ान है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हर आदमी हिचकेगा। दोस्तों ऐसा होता है, एक राइटर होने के नाते मैं इसे महसूस कर सकता हूं कि अगर आपको कह दिया जाए कि आपको ये नहीं लिख सकते, ये लिखना है, ये करना है, तो फिर आप उस घेरे में जब लिखने लगेंगे तो आपकी जो अपनी प्रतिभा है, मान करके चलिए कि वो प्रतिभा कुंठित हो जाएगी, और फिल्म जगत के लिए तो ये सीधे सीधे फिल्म बोर्ड है, जबकि फिल्म दुनिया की सबसे एक तरीके से रियलिस्टिक विधा मानी जाती है, क्योंकि वहां चीजें ज्यादातर डायरेक्ट कही जाती हैं। लिटरेचर में जब यही चीज आती है तो आप देखेंगे कि वो इनडायरेक्ट तरीके से कही जाएगी, है ना, प्रतीकों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से घुमा फिराकर कह दी जाएगी। लेकिन फिल्म चूंकि एक बड़ी रियलिस्टिक विधा की तरफ बढ़ रही है तो वहां चीजें बहुत साफ साफ सीधे सीधे तौर पर दिखाई देती हैं, और चूंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसको देखने वाला जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, मास मीडिया जिसको कहा जाता है, तो बट नेचुरल है कि उसमें पॉपुलरिटी भी बहुत काम आती है, मास को देख करके लिखा जाता है। लिटरेचर तो कुछ ही लोग पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे, लेकिन जो फिल्म है उसको आम आदमी भी देखता है, तो स्वाभाविक है कि फिल्म का जो की जो बनावट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उसकी बहुत तीखी आलोचना हुई है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, श्याम बेनेगल उसके अध्यक्ष थे, और श्याम बेनेगल ने ये बात सुझाई थी कि ये जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है इसका काम फिल्मों में कटौती करना नहीं होना चाहिए, इसका काम केवल वो देखे कि ये फिल्म किन लोगों के लायक है, और केवल वो सर्टिफिकेट दे बस कि इस फिल्म को 12 साल के लड़के तक देख सकते हैं, इस फिल्म को इस उम्र के लड़के तक देख सकते हैं, इस फिल्म को हर कोई देख सकता है, वो इस तरह का सर्टिफिकेट दे दे और फिल्मों को रिलीज कर दे। तीसरी चीज ये भी है दोस्तों कि जहां सोशल मीडिया आ चुका है, आपके पास हाथ में मोबाइल है, उसमें यूट्यूब है और क्या क्या दुनिया भर की चीजें, उसमें क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं सोशल मीडिया में, एक से एक चीज अवेलेबल हो रही है, तो वहां आप कंट्रोल अगर करने की स्थिति में नहीं है तो फिल्मों में इस तरह से कंट्रोल करके आप कोई बहुत अपनी कोई बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। जब दुनिया में चारों तरफ खुलेपन का माहौल बन रहा हो तो फिल्मों को कंट्रोल करना, फिर वो एक विश्व की जो धारा है उसमें वो फिर फिट उतना बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ लोग जो फिल्म इसमें मित्रों खबरों में भी है और एडिटोरियल कमेंट में भी है, इसको पंजाब में हो रहे अभी होने जा रहे विधानसभा के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस फिल्म में वो दिखाया गया है कि पंजाब कितने ज्यादा, पंजाब का जो युवा वर्ग है नशे में कितना उलझा हुआ है, उसी की एक तरीके से पोल खोली गई है इस फिल्म में। तो सरकार को अभी जो सरकार सत्ता में उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक तरह से सरकार के लिए हार का कारण बन जाए, सरकार के ऊपर आ जाए इन सबकी जिम्मेदारी, और जो विपक्षी पार्टी है उसको लग रहा है कि यार ये एक अच्छा मुद्दा है उठाने के लिए कि देखो पंजाब इतना नशे से ग्रस्त है और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो जो सत्ता में है वो इस फिल्म को रोकना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, जो भी है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, और जो सत्ता में नहीं है वो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं कि फिल्म ज्यों की त्यों रिलीज हो। तो एक तरह से इस फिल्म का राजनीतिकरण भी हो गया सा लगता है ये एडिटोरियल कमेंट पढ़ने से और अखबारों की न्यूज से जान पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है मित्रों, इसके ऊपर आज मैं अब दो एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको देख लेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी क्लिपिंग्स हैं, लेकिन क्लिपिंग्स की संख्या कम है। तो मित्रों ये है न्यूज़पेपर से, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी अपने ईमेल लिखने वाले दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसी में से एक मित्र हैं सुभाष कुमार ठाकुर जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में उन्होंने बहुत से स्टूडेंट को बताया, वो कहीं पढ़ने भी जाते हैं पढ़ाने भी जाते हैं, वहां अपने साथियों से उन्होंने चर्चा की और उन्होंने संख्या लिखी कि लगभग उसमें से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं। तो सुभाष जी आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार जो आप ये काम कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से अपने सभी प्रिय श्रोताओं से अपील करूंगा कि वो भी अपने अपने लेवल पर इस तरह की कोशिश करें। तो मित्रों जो मेल आए हैं उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सूरज राजपूत महाराष्ट्र से, चत्र राम लहुआ, हेमराज, प्रशांत उपाध्याय, रघुवीर शाह, सर्वेश कुमार तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से, मनीष नगुलवार और त्रिभुवन जबलपुर मध्य प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं अपना विश्राम चाहता है, कल फिर मुलाकात होगी, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।